हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 15। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफल पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुवन्ति देहि स्तवे, वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यम् ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टकायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 16। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सुत्त गोस्वामी भगवान की एक अद्भुत अवतार के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, रूपम सजग्रीहे मात्स्यम चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारूप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। रूपं सजग्रीहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। रूपं सजग्रीहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। रूपं सजग्रीहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। रूपं सजग्रीहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। रूपं सजग्रीहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। रूपं सजग्रीहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपात्वैव स्वतं मनुम्। शब्दकात् रूपं सजग्रहे मात्स्यम्। रूपं मतलब रूप, स मतलब उसने, भगवान के विषय बता रहे हैं, भगवान के अवतार बता रहे हैं। तो उसने जगृहे मतलब स्वीकार किया, किसका रूप स्वीकार किया, मात्स्यम मछली का। चाक्षुष यानी चाक्षुष, उदिद यानी जल, चाक्षुषोदधिसम उदिद का मतलब होता है जल, और संप्लवे मतलब कब, जब पलावन हुआ था, यानी जब बाढ़ आ गई थी, प्रलय जब हुआ था तब। और नाव्यारोप्य महिमय्या यानी नाव्य मतलब नाव में, आरोप्य मतलब रख कर, मही मतलब पृथ्वी, मैयाम यानी डूबा हुआ, जब पृथ्वी जल में डूब रही थी तब नाव में जितने भी है ना बीज इत्यादि है उन सबको रखा था। और अपात वैव स्वतम मनु, अपात का मतलब होता है रक्षा की, तो यानी भगवान ने यह मत्स्य अवतार रक्षा करने के लिए लिया था। वैव स्वतम मनु, वैवस्वत यानी जो सूर्य वैवस्वान के है ना, जैसे हमारे इस मनु का नाम, हर मन मंत्र में जो मनु होता है ना, तो अभी जो मनु चल रहा है उसका नाम वायवस्वत मनु है। और मनुम का मतलब होता है मनुष्यों के पिता, पिता यानी मनु उनको बोलते हैं, मनुष्यों के पिता को, क्योंकि ये मनुष्य जो वर्ड निकला है ना वो मनु से ही निकला है। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जलप्लावन हुआ और सारा जगत जल में मग्न था, तो भगवान ने मछली अर्थात मत्स्य का रूप धारण किया और वायवस्वत मनु को नाव में चढ़ाकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत की मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होती, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह जलप्लावन सत्यव्रत को आश्चर्य में डालने के उद्देश्य से प्रकट किया गया था। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों यानी विष्णु धर्मोत्तर मार्कंडेय पुराण और हरिवंश आदि के निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होती रहती है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी शीला जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जलप्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतार ग्रहण किया। श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में एक मुख्य बात बताई कि श्रीपाद जो मूल भाष्यकार हैं श्रीमद् भागवतम के वो हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी और इनके अतिरिक्त श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन उन दोनों ने मनु के बदलने के बाद प्रलय का अलग अलग प्रमाण दिया है। यानी कि श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने कहा कि हमेशा नहीं होता है इस तरह कि जब मनु का जब मनवंत्र चेंज होता है तो प्रलय हो, ऐसा सदैव नहीं होता है। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से बताया है, जैसे मार्कंडेय पुराण है, हरिवंश और धर्मोत्तर वगैरह में से निकाल के बताया है कि नहीं, कि प्रत्येक जब भी मनु मनवंत्र चेंज होता है तो प्रलय आती है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी कहा है कि हाँ, ये जीव गोस्वामी का जो ये उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल के बताया है वो ठीक है, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि दोनों इनमें ना विरोधाभास है। तो फिर कहते हैं कि जो अब इनमें से कुछ सही होगा कुछ गलत होगा ना, और कहा जाता है कि वैष्णव कभी गलत नहीं कर सकता, मतलब उनका भाष्य कभी भी वो सत्य बोलते हैं और कभी भी उनके भाष्य में चेंज नहीं हो सकता है, जो उन्होंने कहा है वो एज इट इज ही होगा। तो यहाँ पर क्या लगता है कि थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये भौतिक जगत की बात हो रही है ना। भौतिक जगत में ये परिवर्तनशील जगत है, तो कभी होता है, कभी कंटिन्यूस होता है, कभी कहीं नहीं होता है। तो ये इसमें हमें क्या समझना है कि जो वैष्णव होते हैं, परम वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव, उनका रियल टॉपिक क्या होता है कि भगवान सत्य है और हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, कृष्ण का नाम सत्य है, कृष्ण की लीलाएं सत्य है, कृष्ण का जन्म तथा कर्म सब दिव्य है, हम इन भौतिक इंद्रियों से कृष्ण का पार नहीं पा सकते हैं। तो बाकी अगर ये जो भौतिक क्रियाएं में थोड़ा थोड़ा अगर अंतर होता है तो भी हमें ना इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सही होगा या वो सही होगा। ठीक, हमें ये सब क्या करना है, श्रवण करना। क्यों श्रवण करना? क्योंकि ये सब हमारे कृष्ण से रिलेटेड है। तो कृष्ण से रिलेटेड प्रत्येक वस्तु, चाहे वो किसी भी ढंग से सुनाई जा रही है, तो वो अत्यंत ही मनोहर होती है, अत्यंत ही हृदय को आकर्षित करने वाली होती है। क्योंकि कृष्ण के विषय में जब बोला जाता है, भगवान कहते हैं 10.9 में, मच्चित्तामकृतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरे भक्तों का केवल एक ही कार्य होता है, वो सदैव जब मिलते हैं तो मेरे विषय में बात करना उनको अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है तुष्यन्ति च रमन्ति च, उससे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी में उनको आनंद आता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस वाक्य में शास्त्र के कृष्ण लीला में और इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए उसने रॉन्ग बताया, उसने ये कृष्ण लीला है, सुनकर हमें अत्यंत ही आनंदित होना है। इस संसार में जब भी किसी प्राणी का देह परिवर्तन होता है तो उसका मुख्य कारण उसके मतलब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, यानी जो जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको नया जन्म मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ना अगर किसी को, जैसे अमेरिका में वो प्रचार कर रहे थे श्रील प्रभुपाद, तो बता रहे थे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा शोक होता है अपने शरीर की नुमाइश करने का, तो उसको कई कई जन्मों तक, मतलब कई कई बहुत सारे समय तक उनको है ना वृक्ष योनि में जन्म मिलता है, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की नुमाइश कर सकते हैं, क्योंकि वो वस्त्र धारण नहीं करते। तो अमेरिका में क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो कम वस्त्र पहनते थे, तो श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रश्न किया कि स्वामी जी आप कहते हो कि हमें अपने शरीर की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, परंतु यह शरीर भी तो हमें भगवान ने दिया है ना, तो जो भगवान ने हमें दिया है वो इतना यदि सुंदर, जो भी चीज हमें भगवान ने दी है इतना सुंदर है, तो हमें हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि भगवान ने ये दिया है। तो लोग को ये सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए हम ना उस सबको दिखाए। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा थोड़े है, भगवान के विषय में अगर आप सोच रहे हो कि दूसरों को हम भगवान के विषय में बता रहे हैं, तो वो चीज बताओ जिसको सुनकर या जिसको देखकर वो भगवान की ओर आकर्षित हो, है ना। इस तरह से तो और भी लोग का ध्यान जो है वो भगवान से हटकर भौतिक चीजों में लगेगा। तो हम अगर भगवान की कृपा बता रहे हैं तो भगवान से रिलेटेड करके आते, मतलब ये भगवान के सौंदर्य को बताओ, हमारे सौंदर्य में क्या है, वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो है ना थोड़े समय के लिए होता है और फिर वही चीज जो मतलब ये पंच चीजों से मिलकर बना होता है वो तो नष्ट हो जाता है। तो भगवान की इटरनल सौंदर्य के विषय में बताए कि ये भौतिक तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ना करोड़ों करोड़ों कामदेव भी यदि भगवान के सौंदर्य को देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की सुंदरता के विषय में बताना चाहिए, बाकी है ना भौतिक सुंदरता के विषय में जब भी हम अपनी सुंदरता की चर्चा करेंगे तो लोगों को और भी भगवान के भगवान उनका मन भगवान की ओर से आकर्षित नहीं होगा बल्कि भौतिक चीजों की ओर भी आकर्षित हो जाएगा। तो है ना वहां पर ही है ना बहुत लोग को बहुत शौक होता था मत्स्य मतलब स्विमिंग करने का, ऐसे करते थे, बहुत बहुत देर तक जाते थे जहां पर स्विमिंग की जगह होती थी ना, ऊपर से डाइव मारते थे और घंटों से सुबह से लेकर रात तक स्विमिंग करते थे और उनको बहुत आनंद आता था इसमें। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि क्योंकि इनको बहुत आनंद आता है समुद्र में या फिर इस तरह से स्विमिंग करने में, डाइव करने में बहुत आनंद आता है, तो डेफिनेटली ये मत्स्य बनेंगे, इनको नेक्स्ट जन्म में मछली बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने ये सारी योनियां इसलिए बनाई हैं कि आप जीव की जैसी भी इच्छा है उसके अनुसार उसको सुविधा प्राप्त की जाए। अब वो मछली बनेंगे तो वो इजीली कर सकेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी, वो जब तक जिएंगे तब तक स्विमिंग करते रहेंगे। तो फिर है ना, भगवान हर जीव को सुविधा प्रदान करते। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई भी यदि कोई पशु बनता है, कोई भी जीव, तो फिर उसके पीछे कारण होता है उसकी इच्छा का और उसके कर्मों का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि भगवान स्वयं कभी मत्स्य बनकर आते हैं, तो कभी कूर्मा, और कभी तो सुवर यानी वराह बनना स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका क्या कारण है कि कृष्ण इतने निम्न योनियों को स्वीकार करते हैं? इसका कारण ये है कि कृष्ण केवल और केवल अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हैं कि मेरे भक्त को यदि कष्ट होता है तो मैं कोई भी सीमा को पार कर सकता हूँ, भगवान की कृपा को, भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान की जो करुणा है उसकी कोई सीमा नहीं है। जब पृथ्वी को गंदी जगह पे डाल दिया गया, रस्सा तल में डाल दिया गया, तो क्योंकि गंदी जगह से कोई भी चीज उठाने का कार्य केवल सुवर ही कर सकता है, या फिर है ना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वराह का अवतार लिया। बोला देखो, मेरा भक्त यदि कष्ट में है तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरी रिप्यूटेशन खराब हो जाएगी, है ना, मेरे भक्त को यदि कष्ट पहुंचता है तो मैं वराह बनने के लिए भी तैयार होता हूँ। जब मेरा भक्त, मेरे भक्त को मेरी जरूरत बनती है, पड़ती है, तो मैं ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार होता हूँ ना, रथ का ड्राइवर, पार्थ सारथी। लेकिन भगवान कहीं भी पीछे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये हम कभी सोचे कि मेरी स्थिति इतनी निम्न है कि भगवान भी आकर क्या करेंगे, मेरी कैसी सहायता करेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये भगवान की असीम कृपा है। भगवान जब समुद्र में करोड़ों करोड़ों मछलियों को बना सकते तो क्या स्वयं मछली नहीं बन सकते अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए? भगवान इतने सारे वराह को बना सकते हैं तो क्या पृथ्वी की रक्षा के लिए स्वयं वराह नहीं बन सकते? लेकिन भगवान जब बनते हैं, कोई भी शरीर धारण करते हैं, तो वो दिव्य होता है। भगवान साधारण पशु की भांति नहीं होते हैं, जैसे साधारण मछली या साधारण वराह या साधारण कच्छप की उसकी तरह नहीं होते हैं भगवान। भगवान का, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 11, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि मेरे जन्म और कर्म सब दिव्य है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता, है ना। फिर सब लोग बोलते हैं कि भगवान को क्या पड़ी, तो लेकिन भगवान कहते हैं एवं यो वेति तत्वतः, जो ये बात को तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शोषण, वो फिर ये जन्म को, जब ये जन्म उसका समाप्त हो जाएगा तो फिर वो मुझे प्राप्त करेंगे, क्योंकि मुझे जान गए ना, मेरी दिव्यता को जान गए, अब वो भी दिव्य हो जाएंगे, वो फिर से वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। तो आज बहुत ही सुंदर भगवान ने अवतार लिया है मत्स्य का। और भगवान ने क्यों लिया यहाँ अवतार? क्योंकि एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। अब उन सत्यव्रत, उनका जन्म चाक्षुष मनु के अंत में हुआ था, जब चाक्षुष मनु समाप्त होने वाला था ना, जैसे अभी वैवस्वत मनु चल रहा है ना, और उससे पहले चाक्षुष मनु का नाम था, ठीक है। उनके अंत में महाराजा सत्यव्रत, महाराजा सत्यव्रत ने कठिन तपस्या की, और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, आपने इतनी तपस्या की है, आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या वरदान चाहिए? तो महाराजा सत्यव्रत ने कहा, मैं प्रलय देखना चाहता हूँ, मुझे प्रलय देखने की इच्छा है, आप मुझे ना प्रलय का तमाशा दिखाइए, जैसे प्रलय होती है ना। अब मनवंत्र के एंड में कभी कभी प्रलय होती है जैसे अभी हमने पढ़ा, तो कभी नहीं होती, लेकिन इस दफा मनमंत्र याद है मैंने बताया था आपको कैसे होता है एक मनमंत्र। ब्रह्मा का एक दिन, उसमें कितने कितने वर्ष होते हैं, 4 अरब 32 करोड़ वो दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ का एक रात होती है, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यहाँ पर भौतिक जगत में जब 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे में जो शुरू यानी दिन के जो 12 घंटे होते हैं ना उसमें 14 मनमंत्र होते हैं, ठीक है, और रात के 12 घंटे में प्रलय हो जाती है। मतलब रात के 12 घंटे में कुछ भी नहीं होता, फिर जब दूसरा दिन शुरू होता है ब्रह्मा जी का तो उस 12 घंटे में 14 मनमंत्र होते हैं, यानी एक मनु की आयु। अब एक जैसे 14 मनमंत्र होते हैं ना तो उसमें एक मनु की आयु जानते कितनी है, पता है मैंने आप सबको, 71 दिव्य युग। 71 दिव्य युग का मतलब होता है चतुर्युग, ठीक है, 71 बार है ना सत्युग आएगा, 71 बार द्वापर होगा, 71 बार त्रेता युग आएगा और कलयुग आएगा। 71 दिव्य युग की एक मनु की आयु होती है, और टोटल आयु कितनी होती है एक मनु की, जैसे कलयुग कितना 4,35,000, द्वापर 8,64,000 और त्रेता युग 12,96,000 और सत्युग 17,28,000। इनको अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 43,20,000, यानी 43,20,000, ठीक है। उसको यदि हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, 3,67,02,000, यानी एक मनु की आयु 3,67,02,000 वर्ष है, ठीक है, 3,67,20,000 साल एक मनु की आयु। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु जब समाप्त होता है तो कभी कभी प्रलय आती है और कभी कभी मतलब महाप्रलय नहीं आती है, इस तरह से सब जल पलावन नहीं होता है, ऐसा तो हमने अभी पढ़ा कि कुछ भक्त ऐसे कहते हैं और कुछ ऐसे कहते हैं। तो अभी कौन सा मनु चल रहा है, वायवस्वत मनु, ठीक है, उसके पहले कौन सा था, चाक्षुष मनु। अब चाक्षुष मनु के बीच में मतलब एक प्रलय आया छोटा, और मतलब एक प्रलय आया जिसमें समाप्ति सबकी नहीं हुई, उसमें क्या हुआ था मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन उसके बाद दूसरा मनु चेंज हुआ। वो कैसे हुआ कि सत्यवत महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे प्रलय का आना ये दृश्य देखना है, तो भगवान ने उन्हें कहा तथास्तु आप अवश्य देखोगे। तो बहुत महाराज सत्यवत बहुत ही दयालु राजा थे, बहुत ही शुभ कर्म करते थे, दान देते थे, प्रजा को बहुत ही संतुष्ट रखते थे, अत्यंत ही सुंदर ढंग से राज कर रहे थे। एक बार वो गंगा मतलब एक जलाशय में स्नान कर रहे थे तो सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में उन्होंने जल उठाया, जैसे इसे उठा के फिर ऐसे अर्घ देते तो इस तरह से दे रहे थे, तो उनके हाथ में छोटी सी बिल्कुल चुन्नी सी मछली थी, और आ गई अचानक से, जैसे पानी उठाया तो उसके अंदर मछली भी आ गई। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि मछली वाला पानी मैं वापस डाल देता हूँ उसके अंदर, जल के अंदर दूसरा पानी लेता हूँ अर्घ के लिए। लेकिन जैसे वो डाल रहे थे तो मछली ने बोला, राजा राजा कृपया मुझे फिर से जल में मत डालिए। अरे ये कैसे होता है पता है, पहले जमाने में राजा जो होते थे वो अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे, क्योंकि अब राजा जो होते हैं वो मनुष्यों के भी होते हैं और उस देश में जितने पशु हैं उनका भी ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको, तो राजा लोग जो हैं वो पशुओं की भाषा भी सीखते थे, उनको पशुओं की भाषा भी समझ में आती थी, ताकि उनको भी यदि कोई कष्ट हो तो राजा से जब वो निवेदन करें तो उनको है ना समझ में आए ना राजा को कि क्या प्रॉब्लम है इनके साथ। तो राजा ने कहा कि क्योंकि तुम मत्स्य हो, मछली हो छोटी सी, अगर मैं तुम्हें बाहर रखूंगा तो फिर तो तुम जी नहीं सकोगे, तुम्हें तो जल में रहना चाहिए। तो मछली ने कहा, वो तो ठीक है, परंतु मैं बहुत छोटी हूँ ना। तो ये जल के प्राणियों का नियम है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। मुझे बहुत भय लगता है, इस जलाशय में बहुत बहुत बड़ी मछलियाँ हैं और वो अवश्य मुझे खा जाएंगी। आप तो प्रजा के रक्षक हो ना, आप मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से निकाल कर किसी सुरक्षित स्थान में रखो। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चलो मेरे साथ। फिर वो घर में ले गया उसको और एक छोटा सा ट्रप उठाया, उसके अंदर उसको रखा। बोला, देखो यहाँ पर कोई और मछली नहीं है, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ पर सुरक्षा से रहो और यहाँ पर कोई भी तुम्हें खाएगा भी नहीं, कोई धमकाएगा नहीं। तो ऐसे रख के जब राजा मुड़ा, मतलब अब जा रहा था अपने कार्य करने के लिए, तो इधर से उसको जोर से आवाज आई, राजा राजा। तो भाषण देखा कि कहाँ से आवाज आ रही, देखा तो जो मछली थी चुन्नी सी, वो जो ट्रप था ना उसकी जितनी बड़ी हो गई और बोली, अब मैं इसमें फंस रही हूँ, मुझे यहाँ पर तो मैं मतलब स्वतंत्रता से विहार नहीं कर सक रही हूँ, मैं जो तो फंस रही हूँ, तो आप मुझे थोड़ा बड़ा स्थान दीजिए ना। तो फिर राजा ने उससे भी बड़ा है ना, मतलब महल के बाहरी गार्डन में एक छोटा सा जैसे होता है ना, और नहर वो पॉन्ड की तरह जैसे तालाब होता है ना, ऐसा उन्होंने खोद के दे दिया। बोला, इसमें आप आराम से रहिए, ठीक है। तो फिर उसमें उसको रख के जब वो जा रहे थे महाराज, तो फिर उस आवाज आई, राजा राजा। तो फौरन से ना उसने सुना कि वापस से क्या हुआ, जाके देखा तो जितना तालाब बनाया था ना, मछली उतनी बड़ी हो गई। राजा देखकर आश्चर्य में फंस गया। फिर मछली ने कहा, राजा तुमने मेरी रक्षा करने का प्रण किया है, अब मेरी सुरक्षा करो, यहाँ पर तो मैं फंस रही हूँ, कुछ मुझे मेरे योग्य स्थान दो। तो फिर राजा ने कहा, तो फिर आपको मैं नदी में, जो गांव की नदी है ना वो बड़ी है, उसमें मैं आपको डाल देता हूँ, वहां पर आप है ना स्वतंत्रता से और सुरक्षा के साथ है ना विहार कीजिए। तो उसमें नदी में डाल के जब राजा जा रहे थे, तो वापिस आवाज आई, राजा राजा। तो फिर ना उन्होंने देखा तो वो मछली जो है वो नदी की जितनी बड़ी हो गई। फिर राजा को बोला, मैं यहाँ पर भी तो फंस रही हूँ, आप मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए ना। फिर राजा ने उससे बड़े जलाशय में जो था उसके अंदर उसको डाला कि आप है ना इधर अब सुरक्षित रहिए। तो जैसे जा रहा था फिर से आवाज आई, राजा राजा मैं यहाँ पर फंस रही हूँ, मुझे कोई मेरे योग्य स्थान दीजिए। तो फिर राजा ने देखा, अब तो ये बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि आप समुद्र में, तो उसको बोला कि आप देखो आप बहुत बड़ी हो गई हो ना, तो समुद्र में इतनी बड़ी मछलियां नहीं है, आपको कोई नहीं खाएगा, मैं वापस से आपको समुद्र में डाल दूं, ऐसे डाल देता हूँ। तो बोला, तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो राजा ने कहा, ये मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हम किसी प्राणी की सुरक्षा नहीं कर सकते। यदि संसार में कोई किसी की रक्षा कर सकता है, किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो वो केवल और केवल भगवान है। भगवान की असीम अचिंत्य शक्तियां हैं जो किसी जीव, हम तो देखो एक छोटी सी चीज को भी संभाल नहीं सकते। तो राजा को यह पता चला कि वाकई में हमारे, हम भले चाहे कितने भी बड़े राजा हो जाए, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि एक छोटे से प्राणी की भी हम रक्षा कर सकें, क्योंकि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, तो केवल भगवान ही किसी को रक्षा सुरक्षा प्रदान कर सकते। तो बोला, ठीक है मुझे भले समुद्र में डाल दो। तो जब समुद्र में डाला, समुद्र कितना बड़ा होता है, 80 करोड़ माइल्स, पता नहीं इतना है, 80 मिलियन माइल्स कुछ, इतना बड़ा समुद्र जिसमें मत्स्य को डाला। और जब डाल के ढाला ही था तो समुद्र जितना बड़ा हो गया, जितना समुद्र था पूरा का पूरा मत्स्य के शरीर से भर गया, इतना बड़ा समुद्र और वो मत्स्य इतना बड़ा हो गया। तो फिर है ना राजा ने बोला कि आप कोई साधारण मत्स्य नहीं हो सकते, क्योंकि कोई साधारण मत्स्य एक ही दिन में इतना बड़ा नहीं हो सकता, और कोई भी इतना बड़ा मत्स्य तो हो ही नहीं सकता। तो आप मुझे ये है ना, पूरा विश्वास है कि आप मेरे आराध्य विष्णु ही हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। फिर भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में उनको दर्शन दिया महाराजा सत्यव्रत को। फिर महाराजा सत्यव्रत ने भगवान की बहुत बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत बहुत प्रार्थनाएं की, और उद्देश्य जानने का बना बताया कि मैं उद्देश्य जानना चाहता हूँ इस स्वरूप का। तो बोला ये तुम्हारी इच्छा के कारण हुआ। बोला मैं, फिर उसे याद आया, बोला आपने पहले बहुत तपस्या की थी क्योंकि आपको प्रलय का दृश्य देखना था। अब प्रलय होने वाली है, अब आपको एक कार्य करना है, एक बहुत बड़ी नौका बनाओ। नौका में जितने भी बीज हैं, जैसे वनस्पतियों इत्यादि के जितने भी बीज होते हैं ना, जैसे फ्रूट्स के और हर चीज के, वो सारे बीज एकत्रित करो पना, और है ना पशुओं और जीवों की जितनी योनियां हैं उनको एकत्रित करो, ताकि दोबारा से जब प्रलय होने के बाद निर्माण होगा जगत का तो वो सारी चीजें चाहिए होंगी। तो महाराजा सत्यव्रत ने सप्तऋषियों के उनकी है ना सहायता से सारे जितने भी बीज थे और जितने भी योनियों के जीव थे उन सबको एकत्रित किया, उस नाव में बिठाया। और मत्स्य अवतार ने कहा था कि आज से 7वें दिन जो है वो प्रलय होने वाली है। फिर 7 दिन के पश्चात, 7 दिन के अंदर उनको ये सारा कार्य करना था। उसके पश्चात अचानक से इतना तेज तूफान, इतना तेज मतलब बाढ़ आ गई, जैसे बाढ़ आई ना, सारा इतना जल प्लावन हो रहा था, पूरा जल 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 जल, जैसे ऐसे भगवान बताते हैं ना, कल्पवृक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो कल्प में तो ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है, फिर तो डेफिनेटली होता है, फिर तो कुछ नहीं रहता, ये जो बीज बीज हैं वो भी कुछ नहीं रहते, सब कारण दक्षिण विष्णु में चले जाते। लेकिन मन्वंत्र के चेंज करने पर भगवान ने ऐसी योजना की कि उन्हीं में से वो मतलब वही जो बीज वगैरह वही बचाए, उनको नाव में रखा। लेकिन जब इतना ज्यादा तेज बारिश आने लगी, तेज जब जल प्लावन होने लगा, बहुत बहुत तेज है ना बाढ़ आने लगी, तो नौका ना पकड़ नहीं देती। तो भगवान ने उन्हें उसी टाइम पर बताया था कि उस नौका को की रक्षा करने के लिए मैं उस समय जब आ जाएगी ना प्रलय 7 दिन के बाद, तो मैं स्वयं उस जल में आऊंगा, प्रकट होऊंगा, और मेरे यहाँ पर एक सोने का सींग होगा। तो आप ऐसा करना, जो नौका की डोरी है ना वो सींग के अंदर लगा देना ना, मतलब पकड़ लेना उससे, ताकि फिर नौका जो है वो डूबेगी नहीं। फिर भगवान ने बताया कि वासुकी स्तंभ, मतलब जो वासुकी नाग है ना वो आएगा, उसको आप डोरी बना लेना। फिर उस समय सत्यव्रत मुनि ने देखा, जब बहुत बहुत तेज प्रलय का आ रहा था ना, ऐसे पूरा जल हो रहा था, तो फिर उन्होंने देखा कि वही साक्षात भगवान जो जिन्होंने उन्हें 7 दिन पहले दर्शन दिए थे वो प्रकट हुए, और वासुकी सर्प के द्वारा उनके जो इतना खूबसूरत, उनको यहाँ पर एक सोने का सींग था गोल्डन कलर का, उसके साथ उसको डोरी मतलब डोरी बना के बांध दिया। फिर इतनी तेज वर्षा, इतना तेज तूफान, इतना तेज प्रलय, लेकिन सब और सप्तऋषि भी उस नाव में थे, तो ये सप्तऋषि और सत्यव्रत महाराज एकदम संतुष्ट हो गए। क्यों हो गए इतना संतुष्ट? पता है इतना खतरनाक होता है वो प्रलय का, हमारे पास इतने शब्द भी नहीं है जिसके हम प्रलय के विषय में बता सके, इतना खौफनाक दृश्य होता है। लेकिन जब भगवान मत्स्य रक्षा करने के लिए आए, और वो इतना अच्छा सुंदर स्मित, बहुत ही सुंदर मुस्कान थी उनके होंठों पे, और उनको देखकर सब इतना संतुष्ट हो गए कि अब कृष्ण के हाथ में जब हमारी डोर आ गई है, जब भगवान ने स्वयं हमारी डोर को पकड़ लिया है, फिर चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमारा कुछ भी अहित नहीं होगा। क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसको कोई भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो फिर है ना इतना ज्यादा सुरक्षित उन्होंने अनुभव किया और कुछ समय के बाद प्रलय समाप्त हो गया। और फिर ऐसे मतलब तब तक उन्होंने भगवान ने उनकी रक्षा की और प्रलय होने के बाद जब पूरा जल पलायन हो गया फिर दोबारा से सृष्टि का ये जो वैवस्वत मनों के जो प्रथम राजा थे ना जैसे वो थे सत्यवर्त मुनि, तो फिर उसके बाद तो पुनः प्रकृति का निर्माण हुआ और सब बीज वगैरह बोए गए इस तरह से हुआ। तो ये अत्यंत ही सुंदर भगवान का अवतार जो अपने भक्त की सुरक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य बन गए। और आज हम श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस संसार में हम हर जगह सुरक्षा के लिए ही निहारते हैं, जिसके हमारे ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ना, किसी से दोस्ती भी करते हैं तो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा पात्र हो जो कि ना इस तरह के जब विपदा हमारे ऊपर आए तो हमें सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा सोचते हैं सदैव। तो इस संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता, चाहे कोई बड़े से बड़ा राजा भी हो तो भी उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि जीव की रक्षा कर सके। तो यदि संसार में कोई सेफ साइड है, कोई सुरक्षित स्थान है, तो वो केवल और केवल भगवान के चरण है। अब यहाँ पर हम कहें हम इतने पवित्र नहीं हैं कि भगवान हमारे लिए अवतार लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इतने कृपा है, भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि अपने छोटे से छोटे बच्चे को भी वो दुखी नहीं देख सकते हैं। तो भगवान आएंगे नहीं, भगवान आ चुके हैं, वो यहीं पर बस गए हैं। खासतौर पर कलयुग के प्राणियों के लिए, जब भगवान ने देखा कि अब कलयुग इतना ज्यादा घोर, अब कब कब भगवान को बार बार आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, हर पदम पदम यह त्रिपदा सर्वत्र दुखम पश्ये, हर एक क्षण में, हर एक कदम में, हर एक दब पर इतनी ज्यादा तकलीफें हैं, इतनी ज्यादा कोई न, कभी इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, कितने क्रूर लोग होते हैं, कितने हम लोगों को आपदाओं को विपदाओं को सहन करना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि अब तो हर क्षण अवतार लेना पड़ेगा, तो यहीं आके बस जाता हूँ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो, कि मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हारा दुख, मैं लेकर आया हूँ भगवान को, साक्षात भगवान अभिन्नत्वान नाम नामिनो कृष्ण में, और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। पकड़ लो इसका हाथ, आप भगवान के नाम की डोर को पकड़ो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण साक्षात कृष्ण भगवान के नाम में विराजमान है। और जिस तरह से कृष्ण रक्षा करते हैं उसी प्रकार से भगवान का नाम भी सुरक्षा प्रदान करता है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां अपने नाम के अंदर डाल दी है, नियमित सिमरणे न काला, और कोई नियम नहीं है कि इसी काल में आपको स्मरण करना, जब आपको लगे कि अब मैं भौतिक पीड़ा से बहुत उत्पीड़ित हो गया हूँ, या फिर ऐसा अगर दुखी नहीं हो तो दुखी होना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सदैव संतुष्ट रहना, तो पकड़ लो भगवान के पवित्र नाम का दामन। और भगवान जो भगवान के नाम का स्मरण करता है भगवान उसे कभी दुखी नहीं होने देते हैं, वो उनके समस्त संकटों को समस्त दुखों को हरण कर लेते हैं। इसे भगवान का एक नाम है हरि, वो सर्व अमंगल हरि, वो हर अमंगल को हर लेता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल।